ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की गतिविधियां तेज। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। नवनिर्वाचित सांसदों का दिल्ली पहुंचना शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया। और दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही एनडीए गठबंधन का नेता चुना जा चुका है। सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आज राजधानी में बैठकों का दौर जारी रहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को नई कैबिनेट के गठन को लेकर सहयोगी दलों से विचार विमर्श की जिम्मेदारी दी गई है। आज श्री नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले कल सुबह जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। प्रादेशिक समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीपेंद्र कुमार।
एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, शिवसेना, शिंदे गुट, जनता दल सेक्युलर और अन्य सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले एनडीए की कल हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के परिणामों के पश्चात राजधानी में आज मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भविष्य की रणनीति के लिए रूपरेखा तैयार की गई। श्री यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन सराहनीय रहा और पिछले चुनावों के मुकाबले राजधानी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बैठक में कांग्रेस महासचिव दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सांसद रमेश कुमार, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ के अलावा कई अन्य नेता भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने आज आदर्श आचार संहिता हटा ली। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हालांकि विधान परिषद के द्विवार्षिक उपचुनाव के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता अब भी लागू है। नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के इन सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक विज्ञप्ति में सचिवालय ने कहा है कि सदस्यों के स्वागत और उनका निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
सचिवालय में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज से 14 जून तक शनिवार और रविवार समेत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सचिवालय प्रत्येक सांसद को भारत के संविधान, नियमों और निर्देशों आदि से संबंधित उपयोगी प्रकाशनों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मार्गदर्शक चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा सदस्यों के अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था, वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी, होस्टल, राज्य और केंद्र शासित भवनों तथा अतिथि गृह में की जाएगी। सॉफ्टवेयर आधारित कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से इन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। सांसदों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की मेडिकल सुविधा सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन, नितिन गडकरी समेत कई मंत्री शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बैठक में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति भवन में कवरेज के लिए सेटअप की समीक्षा की। इसमें सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में एनडीए गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नाम का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाई दी। उन्होंने आम चुनाव में सफलता के लिए प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सराहना की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति वॉन डेर लेयन की शुभकामनाओं का आभार व्यक्त किया और साझा मूल्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित मजबूत भारत यूरोपीय संघ संबंधों का उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर आज पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ से कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वे अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के प्रवाह को सुचारू बनाने का निर्देश दिया ताकि यह राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके। अदालत ने दिल्ली सरकार को पानी बर्बाद न करने की सलाह दी है। आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हरियाणा को पूर्व सूचना देकर कल छोड़ देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि इससे पहले भाजपा ने दिल्ली सरकार को कई बार अनुरोध किया था कि राजधानी में जारी जल संकट से निपटने के लिए वह हिमाचल प्रदेश से सहायता मांगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पिछले एक महीने से जारी जल संकट की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि आतिशी लगातार जल संकट के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले दिल्ली को जितना पानी मिलता था उतना ही पानी आज दिल्ली को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन 30 वर्षों में दिल्ली की आबादी कई गुना बढ़ी है। श्री भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में जारी जल संकट की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दो बार मुलाकात की थी।
दिल्ली की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, ये सब जानते हैं। हमने हरियाणा से कहा कि आप पानी छोड़िए, हरियाणा तैयार नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। हमने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने बात की है, मैं खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 बार मिला सुखू जी से, और हमने कहा कि हम आपसे पानी खरीदना चाहते हैं। सुखू जी तैयार हो गए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे।
दिल्ली पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश किया। इनके पास से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की प्रतिबंधित कैंसर की दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने संबंध में 4 लोगों को लाल किला इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बरामद की गई प्रतिबंधित दवाओं की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिस्र, तुर्की और सीरिया के पासपोर्ट बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली में कार्यरत एक सेल्स टैक्स ऑफिसर को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित समस्या के समाधान के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने सीबीआई को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ 40,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। निगम के अनुसार संपत्ति करदाता अब आसानी से यूपीआई, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से डिजिटल रूप से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम ने बताया है कि डिजिटल भुगतान न केवल समय पर भुगतान और रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा बल्कि व्यापार करने में आसानी होगी। दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे इस महीने की 30 तारीख से पहले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक मुश्त संपत्ति कर का भुगतान करके 10% की छूट प्राप्त कर सकता है। सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉगिन कर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में कल से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि का वितरण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से कम समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में आज भी तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। स्कूली विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर राजधानी के 4 क्षेत्रों पंजाबी बाग, रोशन आरा बाग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और बाल भवन में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की गतिविधियां तेज। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। नवनिर्वाचित सांसदों का दिल्ली पहुंचना शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया और दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।